तक सिंहासन से हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुट बीच दरबार अपना सजाएं।
ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे राजयोगी बच्चे हैं, सभी राजयोग का अभ्यास करते हैं और बाबा कहता है ये राजाओं का राजा बनाने वाला योग है। यानी यही एक पढ़ाई और योग ऐसा है जिसको करने से राजा बनते हैं, और कोई भी योग दुनिया में ऐसा नहीं है या पढ़ाई ऐसी नहीं है जो राजा बनाती हो। दुनिया में जो राजा बनते हैं या तो वो धन दान करने से बनते हैं जो बाबा हमें सुनाते हैं, और या फिर वो राजाई कुल में जन्म लेते हैं। लेकिन वर्तमान समय संगम युग पर पहले हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, यानी बाबा के राजा बच्चे हैं। अभी वो राजाई नहीं है जो तख्त वाली राजाई होती है, लेकिन बाबा के दिल तख्त वाली राजाई जरूर है हमारे पास। तो सभी राजा हैं वर्तमान समय, फिर चाहे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, स्वयं पर राज्य सभी का एक जैसा नहीं है, पर हैं हम सभी स्वयं के राजा। आत्मा राजा है और कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं। अभी हम गीत सुन रहे थे तो सभी हम आत्मा राजा का हमारी कर्मेंद्रियों पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राज्य है। दुनिया में क्या होता है, दूसरों पर राज्य सहज करते हैं, दूसरों को क्या करना चाहिए या उनको कंट्रोल करना, उनको चलाना वो आसान लगता है। स्वयं को क्या करना चाहिए, मेरी कर्मेंद्रियों से मुझे कैसे कर्म करने चाहिए, खुद पर राज्य करना नहीं आता है। तो बाबा ने संगम युग पर यही परिवर्तन कर दिया कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, पहले स्वयं पर राज्य और उसके बाद भविष्य में फिर विश्व पर राज्य मिलेगा। और दुनिया में भी माता पिता बच्चों को राजा बच्चा कहते हैं, ये तो मेरा राजा बेटा है। वो जरूरी नहीं है कि बड़ा होकर के राजा बनेगा, दुनिया में तो जो भी काम उसको मिलेगा वो काम वो करेगा, लेकिन एक नशा होता है माँ बाप को, वो अपने बच्चों को इतना ऊंचा स्वमान देते हैं कि ये तो मेरा राजा बेटा है। लेकिन बाबा कहते हैं कि मुझे नशा है कि मेरा तो हर एक बच्चा सचमुच राजा बच्चा है। तो सभी समझते हैं हम बाबा के राजा बच्चे हैं। तो स्वराज्य अर्थात जो भी कर्मेंद्रियां हैं स्थूल या सूक्ष्म, वो बाबा के श्रीमत अनुसार चले। अब तीन मत है, एक तो बाबा की श्रीमत है, दूसरा है मनमत और तीसरा है परमत। तो या तो मेरी मनमत के अनुसार चल सकती है, जो मनमत पुराने संस्कारों से बनी हुई है, मेरा मन जैसा चलाता है यानी मन के वशीभूत, तो उसको हम राजा नहीं कहेंगे, उसको हम वशीभूत कहेंगे कि मन जैसा चलाता है वैसे मेरी कर्मेंद्रियां चलती हैं। मेरा मन हुआ तो मैंने ऐसा बोल दिया, मेरा मन हुआ तो मैंने ये सब सुन लिया, मेरा मन हुआ तो ये सब मैंने देख लिया, जैसे मन ने कहा वैसे मैंने कर लिया। तो मन मत से चलना, एक है परमत से चलना, अपना निर्णय तो नहीं ले सकते लेकिन जिस दूसरे की बात मानते हैं वो जो कहता है वही कर लेते हैं। अब वो गलत कहे या सही कहे वो मुझे पता नहीं, लेकिन उसने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा कर लिया या ऐसा मैंने कह दिया। लेकिन श्रीमत माना, मेरा मन क्या कहता है वो नहीं, दूसरे क्या कहते हैं वो भी नहीं, लेकिन बाबा क्या कहता है, बाबा की श्रीमत क्या है वही मुझे पालन करनी है। इस समय सर्वश्रेष्ठ मत कौन सी मत है? श्रीमत है। और श्रीमत अनुसार जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं जिन्हें हम आंख कान मुख हाथ पांव कहेंगे, और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार, वो सब हमारे कंट्रोल में हो। तो जब हम आंखों की बात करते हैं तो बाबा हमें कहते हैं हमारी आंखें सबल आई होनी चाहिए, वर्तमान समय जो हमारी दृष्टि वृत्ति होनी चाहिए वो सबल होनी चाहिए। सबल आई का मतलब है आत्मिक दृष्टि वृत्ति, जिसको भी हम देखें आत्मा रूप में देखें, क्योंकि हमें पता है कि हम सभी आत्मा है, तो किसी की भी देह पर मेरी नजर ना जाए, वो देह रूप में कैसा दिखता है या क्या करता है उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, लेकिन उस आत्मा के आदि अनादि स्वरूप को मुझे देखना है। इसे कहते मस्तक मणि पर हमारी नजर होनी चाहिए, और वो भी आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, फिर चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, वो भाई भाई की दृष्टि, उसको बाबा सबलाई कहता है, भाई बहन की भी दृष्टि नहीं। और एक बाबा कहता है क्रिमिनल आई, क्रिमिनल आई माना कि कभी तो मैं आत्मिक दृष्टि से देखती हूं और कभी कभी देह पर भी मेरी दृष्टि चली जाती है, और जब देह पर दृष्टि जाती है तो दृष्टि वृत्ति चंचल होने के संभावना है। हम कर्म कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन आंखों से देखा और मन पर उसका प्रभाव आ गया, इसको बाबा कहता है दृष्टि वृत्ति चंचल होना, यानी मन पर उसके संकल्प चलने लगे, और अगर वो विकारी संकल्प हो गए तो उसको हम विकल्प कहेंगे, संकल्प में गए फिर विकल्पों में भी हम चले गए, तो इसका मतलब हम आंख की कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो गए, इसको हम अधिकारी होना नहीं कहेंगे। और अगर देह रूपी सांप को टच किया, बाबा ऐसे कहता है जैसे सांप को टच करेंगे तो वो काटेगा जरूर, और काटेगा तो उसका विष भी आ जाएगा, ऐसे ही अगर देह पर दृष्टि गई तो उसका प्रभाव मन पर ना आए ऐसा नहीं होगा, यानी उस सांप का विष लगने ही वाला है, उससे मुझे अपने आप को कैसे सेफ करना है वो युक्ति बाबा ने हमें दी है कि मैं आत्मा आदि अनादि शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं, यही मेरा अनादि स्वभाव है और आदि स्वभाव है, और सभी भी अपने अनादि स्वभाव में शुद्ध और पवित्र आत्माएं ही हैं, सभी सतो प्रधान आत्माएं हैं। ये स्मृति निरंतर मुझे रहती है, इस पर मेरा अटेंशन है, कोई भी चीज में अगर हम अलबेले हो जाते हैं तो मार्जिन होती है, तो बाबा कहता है कि दृढ़ संकल्प से डबल लॉक लगाओ इसको, क्योंकि माया देखती है कि जहां ये कमजोर है वहीं से वो वार करती है, और देह अभिमान के संस्कार आत्मा के अंदर जन्मों से पड़े हुए हैं, तो बहुत जल्दी मन देह अभिमान के वश होता है। फिर दूसरी बात, कई बार लोग कहते हैं कि दुनिया में हम रहते हैं, दुनिया के वातावरण में रहते हैं, तमो प्रधान वातावरण में रहते हैं, से लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं, और आजकल तो मीडिया का जमाना है, हर एक व्यक्ति 24 घंटे मीडिया के संपर्क में है, और उसमें जो कुछ भी देखते सुनते हैं वो सब क्या होता है, नेगेटिव, या उसको बाबा कहता है विकारी होता है। तो ऐसे में जब हम वो सब देखते हैं सुनते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर आ जाता है। तो अगर मेरे मन पर प्रभाव आता है तो मुझे देखना ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कभी अभी मेरी धारणा उतनी मजबूत नहीं है, और अगर हम कहीं कमजोर पड़ जाते हैं तो उनसे हम दूर रहें। और ये भी अपने आप को स्मृति में रखना है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। ये सब तो होगा ही, बाबा ने हमें बताया है कि आने वाला समय इतना पति तमो प्रधान समय है, तभी तो भगवान को पति से पावन बनाने के लिए आना पड़ा है। तो बाबा के कार्य में हम सहयोगी हैं, अगर हम प्रभाव में आ जाते हैं तो हम परिवर्तन कैसे करेंगे। हमारे अंदर वो परिवर्तन की शक्ति होनी चाहिए कि उस तमो प्रधान वाइब्रेशंस को भी हम पवित्र वाइब्रेशंस बना दें। जितनी हमारी दृष्टि वृत्ति आत्मिक रहेगी, जहां भी हम हैं, गृहस्थी में हैं, अपने कार्य क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरी स्मृति जितनी पवित्र है उतनी ही मेरी स्थिति भी श्रेष्ठ होगी, और उसका प्रभाव वातावरण पर पड़ेगा, ना कि उनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए, यदि हम ये एक्सक्यूज देते हैं, बहाना देते हैं कि हम क्या करें, हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा ऐसा हो रहा है आज के समय में, उसका असर हमारे ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब अभी भी हम अधिकारी नहीं बने हैं, अभी भी हम कहीं ना कहीं परवश हो जाते हैं, शिभूत हो जाते हैं। तो दृष्टि वृत्ति की शुद्धि, उसका दूसरा पहलू है कि मेरी नजर किसी के भी अवगुण और कमजोरी पर नहीं जानी चाहिए। किसी व्यक्ति को भी जब हम देखते हैं ना, आंखें जो भी देखती हैं उस पर सोचती हैं, तो किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, मानो उसकी देह को अभी हम नहीं देख रहे, लेकिन उसके गुण अवगुण पर भी हमारी नजर जाती है, देखो इसके अंदर इतने श्रेष्ठ गुण हैं, तो या तो प्रभावित हो जाएंगे या फिर उसकी कमियां दिखाई देंगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नफरत या मन में उसके प्रति उपेक्षा का भाव, देखो ये तो ऐसे करते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं, तो ये नजर भी क्रिमिनल आई है। बाबा कहता है सबल आई माना गुण ग्राहक दृष्टि, सदा आत्मा के गुणों पर मेरी नजर जाए। हर एक आत्मा में कोई ना कोई, और ब्राह्मण आत्मा में तो विशेष कोई ना कोई गुण है ही, तभी बाबा ने चुना है। 35 अवगुण है, लेकिन फिर भी एक गुण ऐसा जरूर है जिस पर भगवान की नजर पड़ी है, तो मेरी नजर भी किस पर पड़नी चाहिए। लेकिन हम स्वभाववश क्या देखते हैं, 35 गुण होंगे वो छोड़ देंगे, एक अवगुण है क्या होगा, नजर किस पर जाती है, उस एक अवगुण पर चली जाएगी, और उसी के अनुसार ही हमारा व्यवहार और दृष्टिवृत्ति उस आत्मा के प्रति होने लगती है। तो इसका मतलब वो अशुद्धि हमने ग्रहण कर ली ना, मैंने देखा और उसे अपने चित्त पर ले लिया, तो उसको हम सिविलाई नहीं कहेंगे। फिर हम मुख की बात करते हैं, तो मुख पर हमारा अधिकार माना, बाबा की श्रीमत है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो। कम बोलो, कई भाई बहने कम बोलने में भी थोड़ा सा मुश्किल अनुभव करते हैं। बाबा की श्रीमत है अंतर्मुखी सदा सुखी, जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे उतना बाबा की याद सहज बनी रहेगी, जितना बाह्य मुक्ता में जाएंगे, जितना वाचालता यानी बहुत बोलने में बुद्धि लगी रहेगी उतना हमारी शक्ति खर्च होगी, उतना हम बाबा से भी योग का शक्तिशाली अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो कम बोलना माना कईयों को लगता है कि जैसे कि सजा हो गई है, बोले बिना रह नहीं सकते हैं। तो ये अपनी चेकिंग हमें करनी है कि क्या सचमुच हम मौन भट्टी अगर हमें रखाई जाए कि पूरा दिन यहाँ आप आते ना, भट्टी में जब आते हैं तब आपको विशेष अनाउंस किया जाता है कि 3 दिन आपको पूरा मौन में रहना है। जब तक आवश्यक नहीं हो बिल्कुल एक शब्द भी बात नहीं करनी, और खासकर सांसारिक बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। लेकिन कितना मौन रह पाते हैं, क्लास हॉल से बाहर निकले और भूल जाते हैं। तो शांत रहना या मौन रहना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कम बोलने में या मौन की भाषा में सबसे बड़ा सुख है, और वो अनुभवी ही जाने। जैसे कहते हैं कि गुड़ खाने वाला ही जानता है कि गुड़ का स्वाद क्या है, ऐसे अंतर्मुखी ही जानता है कि उसका सच्चा सुख क्या अनुभव होता है। फिर धीरे बोलो, तो धीरे बोलना बाबा कहता है रॉयल्टी है। जो भी रॉयल आत्माएं होती हैं, जिन्हें भी पर्सनालिटी वाली आत्माएं दुनिया में माना जाता है, उनको बहुत जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती, वो बहुत धीरे से अपनी बात कहते हैं। और वो जो धीरे से भी बोलते हैं उस बात में भी सार होता है, समझ में आती है सबको, बहुत ज्यादा उनको कहने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो आवाज ही ऐसा है, बोलते ऐसे हैं जैसे गुस्सा कर रहे हो, कहते हैं कि धीरे बोल सकते हैं, बोलते नहीं हम गुस्सा नहीं कर रहे, तो हमारा वॉल्यूम ही ऐसा है बोलने का। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आप माइक का आवाज कम ज्यादा कर सकते हो, अपने मुख के माइक का आवाज कम ज्यादा नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते। तो हमेशा, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे बोल कैसे होने चाहिए उस पर हमारा अटेंशन हो, क्योंकि वाणी के द्वारा ही सीधा हम व्यवहार में आते हैं। सबसे पहले कोई व्यक्ति हमारी वाणी ही सुनता है और उसे ही समझ में आ जाता है। जैसे हमारा एक गीत है कि ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उसकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। तो बहुत लोग ये अनुभव भी करते हैं कि जब हम आपके यहाँ आते हैं, आप सब भाई बहने इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा आप कैसे बोल सकते हैं, आपको क्या ट्रेनिंग दी जाती है मीठा बोलने की। तो बहुत भाई बहने बोलते हैं मीठा, व्यवहार करते हैं, क्योंकि जब शुभ भावना होती है मन के अंदर तो जो बोल हम बोलते हैं वो दूसरों को सुख देने वाले होते हैं, वो महसूस भी करते हैं उस बात को। तो ये परिवर्तन जरूर आता है जब हम बाबा के पास आते हैं, तो हमारी वाणी सुखदायी हो जाती है, सुख देने वाले बोल मुख से निकलने लगते हैं। लेकिन कभी कभी हम कड़वे बोल भी बोलते हैं। कब बोलते हैं कड़वे बोल, कब बोलते हैं? जब गुस्से में आ जाते हैं, ये पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। अब कोई ना कोई परिस्थिति तो पैदा होती ही है, और बाबा कहता है पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो पेपर तो जरूर होंगे, टेस्ट पेपर भी आएंगे, और आज का समय तो ऐसा है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जब कोई समस्या नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं आए जिससे कि हमें गुस्सा पैदा ना हो। चाहे किसी ने मुझे झूठ बोला, चाहे किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी, किसी ने मुझे ऐसा शब्द कह दिया जो मुझसे सहन नहीं हुआ, या कहेंगे कि किसी ने मेरी निंदा कर दी, मेरी कहीं चुगली कर दी, ये सब मुझे पता चला, तो क्या होता है? फिर हम भी जैसे को तैसा देने में ऐसे शब्द बोलने लगते हैं एक का दस, जैसे दुनिया वाले करते हैं, भूल जाते हैं कई बार, वही पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। ईश्वरीय संस्कार क्या है? एक का दस बोलना है या जैसे को तैसा देना है, यानी बदले की भावना रखनी है या क्या करना है? सबसे ज्यादा मुश्किल यही होता है। इसने मुझे ऐसा कहा, क्यों कहा? या तो फीलिंग में आ जाएंगे, सहन कर लेंगे, लेकिन फीलिंग में आ जाएंगे। और फिर ऐसा होता है कि 10 बार तो मैंने सहन कर लिया, लेकिन कब तक? आखिर सहन करने की भी तो कोई सीमा होती है। तो 11वीं बार तो मेरे मुख से निकल ही गया। फिर हम अपने को राइट ठहराते हैं, लेकिन इसका मतलब मेरा मुख पर अभी तक अधिकार नहीं है। बाबा की श्रीमत अनुसार हमने सहन किया, तो बाबा की आज्ञा अनुसार जो किया उसकी दुआएं हमें मिलती हैं, वो हमारा जमा होता है। आप पास हुए पेपर में तो आपको उसकी प्राप्ति होने वाली है। लेकिन अगर उसने गुस्सा किया और मैंने भी पलट के गुस्सा किया, तो वो भी फेल और मैं भी फेल। हाँ, उसने झूठ बोला इसलिए मैंने, हम जस्टिफाई करते हैं, उसने ऐसा किया ना इसीलिए मैंने ऐसा किया, अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी। तो उसने ऐसा किया वो तो मेरा पेपर था, लेकिन अगर मैंने भी वैसा किया तो हम तो फेल हो गए। तो इसका मतलब अभी मुख पर हमारा अधिकार नहीं है। और इसीलिए बाबा ने जो हमें सिखाया है, कई हमारे यहाँ जो कबीरदास या संत वगैरह हुए हैं, उन्होंने भी ऐसी बातें वाणी के लिए कही हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। कि हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा खुद का मन भी शीतल हो और औरों को भी वो शांति का अनुभव कराए। हमारे बोल किसी के अंदर हिम्मत पैदा करें, किसी के अंदर उत्साह बढ़ाएं, किसी की निराशा को दूर करें, किसी को सुख शांति का अनुभव कराएं। ऐसे बोल जो लोग सुनने के लिए तैयार हो, जैसे हम दादियों के वचन सुनना चाहते हैं, हमें लगता है कि दादी ने 2 बोल मेरे लिए कहे, वो वरदानी बोल हो जाएंगे, वही मेरे लिए वरदान है। जिसको दुनिया में लोग सत वचन महाराज कहते हैं, कि जो ये वचन कहेंगे वो मेरे लिए सत्य हो जाने वाले हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो हमारी दादियां या वरिष्ठ भाई बहने सुनाते हैं कि उनके लिए जो बोल बोले वो आज सत्य हो गए, आज वही सेवा वो सब कर रहे हैं, इतना मूल्य था उनके 2 बोल का। तो हमारे भी वचन ऐसे हो। हाँ, नहीं तो घरों में क्या होता है, माताएं जब साधारण माता के रूप में व्यवहार करते हैं तो बच्चे ने जरा कुछ उल्टा सुल्टा किया तो बेवकूफ है, गधा है, पागल है, ये कभी नहीं सुधरेगा, क्या क्या जो मन में आता है ऐसे ऐसे शब्द हम बच्चों को बोल ही देते हैं। तो क्या हम ये सही बोलते हैं? कोई भी आत्मा हो, आपके सामने अभी वो बच्चा लग रहा है, लेकिन वो आत्मा रूप में बच्चा नहीं है। आत्मा की उम्र नहीं होती, शरीर की उम्र होती है। और अगर हमने पागल और गधा शब्द भी कहा, अगर कोई मुझे पागल और गधा कहे तो मुझे कैसा लगेगा? तो साधारण बोलचाल के शब्द भी, जिन्हें हम साधारण समझते हैं, ऐसे शब्द भी हमारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। इतना हमारा अपने बोल पर अटेंशन हो और सोच समझ के बोलना। कभी गुस्से में आकर के बिना सोचे समझे हम ऐसे शब्द बोलते हैं जो दूसरों को इतना दुख पहुंचाते हैं कि कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन वाणी का घाव नहीं भरता। जिंदगी भर वो व्यक्ति भूल नहीं पाता कि इसने मुझे ऐसा कहा, लेकिन कब कहा? गुस्से में आकर के हमने ऐसे वचन बोल दिए। तो गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति दाता हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। अगर ये स्मृति मुझे है तब तो हम कितनी भी कोई परिस्थिति पैदा हो जाए हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन जब विस्मृति में आ जाते हैं तब माया चांस ले लेती है और हमसे वो सब कर्म करा लेती है कि हम परवश हो जाते हैं। तीसरा है कानों की बात, हमें बुरा नहीं सुनना है, ये बाबा की श्रीमत है। जैसे कहते हैं गांधी जी के तीन बंदर हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। और बाबा कहता है चौथा एक और है, बुरा मत सोचो। तो बुरा मत सुनो माना किसी की कमजोरी की बातें, किसी के परचिंतन की बातें। परचिंतन होता क्या है, या तो संसार समाचार होता है, इसने ये किया उसने वो किया, इसको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तुमको पता है इसके घर में क्या हो रहा है, माना सास बहू की बातें, आपस की बातें, परिवारों की एक दो की, दरानी जठानी की बातें, तेरी मेरी जिसको कहते हैं, ये सारा परचिंतन। तो अभी हमारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। बाबा कहता है आपने दो युग से बहुत कथाएं सुनी है, इन कथाओं में आप अपना समय बर्बाद नहीं करना है। जो टाइम मिलता है वो बाबा की याद में, और बाबा ने जो हमें ज्ञान रत्न दिए हैं उन ज्ञान रत्नों से खेलो। पत्थरों से नहीं खेलना है लेकिन ज्ञान रत्नों से खेलना है। लेकिन फिर भी जैसे भोजन अगर रोज एक जैसा खाएंगे तो क्या होता है, उबने लगते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ चटपटा मसालेदार भोजन बनाते हैं। तो ऐसे ही ये सारी बातें भी जो होती हैं, ये सारी बातें ज्ञान की बातों में जब मिक्स कर देते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान की बात करेंगे, थोड़ा बहुत सेवाधारियों का परचिंतन भी बीच में मिक्स कर देंगे, तो वो जब हम सुनते हैं, मानो अगर हमने सुना और उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, उसके कारण मेरे व्यर्थ संकल्प चले, उसके कारण बाबा से मेरा योग टूटा, तब तो हमने कुछ नहीं सोचा। लेकिन जब हम योग में बैठे तब मुझे चिंतन चलने लगा, देखो उसने मुझे ये बात कही थी, अच्छा मैंने तो सोचा ही नहीं था, ये ऐसे भी है क्या, ऐसे भी करती है क्या, मानो तो किसका विक्रम बना, सुनाने वाले का भी बना और सुनने वाले का भी बना। हम दोनों ही विक्रम के भागी हुए, यानी अपनी कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो गए। तो समाने की शक्ति हम प्रयोग करें। बाबा कहते हैं दो कान किस लिए दिए हैं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, यानी जो बीच में दिमाग है उस पर असर नहीं आना चाहिए। अगर आपको सुनना ही पड़ता है कभी, मानो सुनाने वाला ऐसा व्यक्ति है कि आप उसको मना नहीं कर पाए और आपको लगा चलो इसका दिल हल्का करने के लिए हम सुन लेते हैं, जो सुना रहे हैं इसका दिल हल्का हो जाए, लेकिन सिर्फ सुनने तक उसका असर मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर इतनी मेरी स्थिति मजबूत है और फिर उसके बाद में उसको कुछ अच्छी राय भी दे दूं, सुन लिया उसका निष्कर्ष क्या है, उसके बाद अब क्या करना चाहिए, सही विधि क्या है, वो हम उसे बता सके तो सुने, और यदि नहीं तो फिर सुनो ही मत, सीधा ही मना कर दो कि हम इस बारे में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हमें सुनना ही नहीं है, आप सही स्थान पर सुनाइए। अगर हमें कोई बात सुनानी भी है, बाबा कहता है, तो सबसे पहले तो बाबा को सुनाए, और अगर लगता है योग नहीं लग रहा है, बाबा से इतना मन उलझन में है, इतना मन परेशान है कि बाबा से तो योग लग ही नहीं रहा है, तो फिर निमित्त आत्माओं को सुनाओ जो आपके निमित्त है, बातों को इधर उधर नहीं सुनाना है। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर आपको उल्टी आ रही है तो आप कहाँ जाकर करेंगे, कहाँ स्थान ढूंढते हैं ना, वॉश बेसिन कहाँ है, सही स्थान पर जाकर उल्टी करें, इधर उधर तो नहीं कर देंगे, गंदगी सब जगह तो नहीं फैलाएंगे ना। तो ऐसे ही ये भी बातों की उल्टी है, कहाँ करना है, सभी जगह नहीं करना है, सभी जगह गंदगी फैलाई माना मैंने वातावरण खराब किया, वातावरण को कमजोर करने के निमित्त हम बन गए, अपने संगठन की रूहानियत को कम करने के निमित्त हम बन गए, तो डबल पाप के भागी बन जाते हैं। हालांकि छोटी छोटी बातें हैं, रोज की जिंदगी की बातें हैं हमारे सामने, और बहुत साधारण, बस यूं ही बैठे थे, यूं ही बातें कर रहे थे, सिर्फ बातें ही बातों की बात होती है, लेकिन छोटे छोटे विकर्म जो जमा होते हैं वो हमारे मन को कमजोर बनाते हैं और बाबा से हमारा योग टूट जाता है, वो भी विकर्मों का खाता बनता है। एक बार एक छोटी कहानी है कि एक बार एक राजा, उसके कान के पीछे एक गांठ थी और इसीलिए वो अपने बालों का स्टाइल इस तरह से बनाता था कि वो गांठ न दिखाई दे। तो उसका वो नाई फिक्स था और उसने उस नाई को पूरा सख्ती से बोलकर रखा था कि यदि तूने गलती से भी बाहर कहीं बता दिया तो तुझे जान से मरवा दिया जाएगा। तो वो कभी भी नहीं कहता था, वो राज सिर्फ उस तक था, लेकिन कुछ कारण से उसे छुट्टी पर जाना पड़ा। तो वो जब बाहर चला गया और राजा को बाल कटवाने थे तो उसे नए नाई को बुलाना पड़ा, लेकिन उसको मन में यही आशंका थी कि ये नया नाई है तो ये देखेगा कि मेरे कान के पीछे ऐसा है और ये किसी को बोल सकता है तो मुझे इसको भी वही बात कहनी पड़ेगी। तो उसने उसको पहले बुलाया अपने पास और कहा कि देखो, तुम आए हो मेरे बाल बनाने के लिए, लेकिन जो भी तुम देखोगे तुमको कहीं बाहर किसी से ये बात नहीं करनी है, और अगर गलती से भी कर दी तो तुम्हारा जीवन समाप्त। तो उसने कहा कि महाराज मैं ऐसा क्यों करूंगा। अब एक्चुअली उसका स्वभाव ऐसा था, जो पहले वाला था वो तो फिर भी गंभीर था, लेकिन जो ये नया नाई आया था उसका स्वभाव ऐसा था कि उसको यदि कोई बात राज की पता है और वो जब तक किसी को न सुना ले उसको चैन नहीं पड़ता था। तो उसने मन में सोचा तो सही कि मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब राजा के महल में आ ही गया हूं तो फिर मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा। और उसने जब राजा के बाल बनाए तो उसे सारा राज समझ में आ गया कि राजा क्या कहना चाहता था। मुझे बाल तो बना दिए उसने, और जब वो महल से बाहर आया तो वो बार बार अपने को याद दिला रहा था कि मुझे किसी को नहीं कहना है, अगर मैंने कह दिया तो क्या होने वाला है। पर भी उसको बात मन में रखी नहीं जा रही थी, क्या करूं, किसको सुनाऊं, कहां सुनाऊं, अगर ये मेरे मन में रही बात तो मेरे मन में हलचल मची रहेगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो उसने सोचा किसी मनुष्य को तो नहीं सुना सकता, अगर मनुष्य को सुना दिया तो फंसने के पूरे चांस हैं, मैं ऐसा करता हूं जंगल में चला जाता हूं और जंगल में बड़ी आवाज में बोल दूंगा, मन से तो निकल जाएगी कम से कम, कोई सुनेगा नहीं। तो उसने ऐसा ही किया कि वो वहां महल से निकल करके सीधा जंगल में चला गया, घर नहीं गया। और जब उसे लगा आसपास कोई भी नहीं है, पूरा वीरान जंगल है, तब उसने बड़ी जोर से इत्मीनान से अपने दिल में जो था वो बता दिया कि राजा के कान के पीछे। फिर कहानी और लंबी है कि वो फिर वो जो पेड़ थे वो कोई साधारण पेड़ नहीं थे, उनकी जो लकड़ी थी वो साज बनाने में काम आती थी, और कैसे फिर वो साज बने और फिर उनसे वही आवाज निकली। लेकिन कहने का भाव क्या है कि यदि समाने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है तो जब तक वो बात कह नहीं देंगे तब तक खाना पचेगा नहीं। तो हमें अपने जीवन में ये बिल्कुल अटेंशन देना है। हम देखते हैं अपनी दादियों को, अपने बड़ों को, उनको किसी ने किसी की बात सुना दी, आज इतना बड़ा यज्ञ संभालते हैं, कितनी बातें उनके सामने आती हैं। बड़ी दादी के साथ में सालों रही हूं और हमने दादी को देखा कि कभी भी दादी ने किसी की बात किसी से कही हो या किसी की बात सुनकर अपने चित्त पर रख ली हो, कभी नहीं। तभी हम उनको कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी सो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं। बाबा की श्रीमत प्रमाण जैसे हमारी कर्मेंद्रियों को होना चाहिए उस पर पूरा अधिकार है, और वो पुरुषार्थ और अटेंशन हमें बहुत काल से रखना है, ऐसे नहीं कि अंत में हम कर लेंगे, ठीक है ना, ये सब करना है, ये तो अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो जाएगा, एकदम थोड़ी सब कुछ हो जाता है, ऐसे सोच के बाबा कहते हैं ना, डनलप के गद्दे लगा करके सो जाते हैं। तो अगर वो अलबेलापन है अभी हमारे अंदर, तो अंत में भी कोई ना कोई कर्मेंद्रिय हमें धोखा देने ही वाली है। एक को कंट्रोल करेंगे तो दूसरे धोखा देगी। हाँ, आज ये देखना नहीं चाहते थे, देख लिया, बोलना नहीं चाहते थे, बोल लिया, लेकिन नहीं, अभी से हमारा पूरा पहरा हो, जिसको बाबा कहता है रोज रात को अपनी दरबार लगाओ। चार्ट चेक करने के लिए क्यों बाबा कहता है? चार्ट का चेकिंग का मतलब यही है कि क्या मेरे मुख से वैसे ही वचन निकले जो बाबा ने कहे, मैंने किसी का परचिंतन तो नहीं किया या परचिंतन तो नहीं सुना, या मेरे मन में सभी के प्रति शुभ भावना रही, सभी के प्रति मेरी आत्मिक दृष्टि वृत्ति रही, वो आत्मिक भाव रहा। और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं मन, बुद्धि, संस्कार, और उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मन का होता है, क्योंकि मन ही कर्म इंद्रियों के वश में सबसे पहले हो जाता है। तो मन के लिए बाबा कहता है, जब चाहे जैसे चाहे वैसी स्थिति में मेरा मन स्थित हो जाए, संकल्प चलाना चाहे, विस्तार में आना चाहे तो मन विस्तार में आ जाए, लेकिन यदि किसी बात का मुझे मन में विस्तार नहीं करना है, फुल स्टॉप लगाना है, मुझे पता है कि मैं ये जो सोच रही हूं ये गलत सोच रही हूं, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए, तो मैंने अपने मन को कहा स्टॉप हो जाओ, तो हो जाएगा। अगर वो कंट्रोलिंग पावर है मेरे अंदर कि मैंने मन को स्टॉप करना चाहा, तो वो स्टॉप हो जाए, उसके बाद वो जरा भी उसको ना सोचे, तब कहेंगे मेरा ब्रेक पावरफुल है, यानी मेरे मन के ऊपर मेरी रूलिंग पावर। ऐसे नहीं कि मैं कह रही हूं मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, और लेकिन बाबा कहते हैं फुल स्टॉप के बजाय लगता है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क टेढ़ा होता है ना, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मैं नहीं सोचूं इस बात पर, सोचना ही पड़ेगा ना, बात ही ऐसी हुई है ना, नहीं सोचूंगी तो समाधान कैसे होगा, ऐसे लगता है बहुत सोचेंगे तब समाधान होगा, बिना सोचे कोई समाधान नहीं होगा। और बाबा कहता है फुल स्टॉप क्या है, बाबा के ऊपर छोड़ दो, हमारी चिंता कौन कर रहा है, बाबा कर रहा है, किसकी जिम्मेवारी है, बाबा की है, हर बात में कल्याण है, ये सब क्या है, फुल स्टॉप, जो भी हो रहा है हर बात कल्याणकारी है, उसमें कुछ ना कुछ राज समाया हुआ है, या मेरा कोई पिछला हिसाब किताब चुप्त हो गया, फुल स्टॉप, उसको बढ़ाना नहीं चाहता। और ये भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए कि मन व्यर्थ संकल्पों की उलझन में न जाए, या नेगेटिव संकल्पों में कमजोर न बने। और बुद्धि के लिए कहेंगे हमारी निर्णय शक्ति सही समय पर सही निर्णय दे। अगर सही समय पर सही निर्णय नहीं हुआ, मिलावट वाला निर्णय है, यानी उसमें व्यर्थ संकल्पों की मिलावट है, फिर सोचते हैं बाद में काश ऐसा नहीं ऐसा कर लिया होता तो ज्यादा सही होता, क्योंकि सही निर्णय नहीं कर पाए। जहां सहन करना चाहिए वहां तो सामना कर लिया, फिर सोचते हैं नहीं यहां थोड़ा सहन कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, और जहां सामना करना चाहिए वहां सहन कर लेते हैं, यानी सही निर्णय नहीं किया। कब क्या करना है अगर सही निर्णय नहीं हुआ, इसका मतलब बुद्धि पर अधिकार नहीं, और वो समय निकल गया तो समय निकलने के बाद सिर्फ पश्चाताप ही होता है। और संस्कारों पर अधिकार, यानी बाबा कहता है जो ईश्वरीय संस्कार है, जो दैवी संस्कार है, वही मेरे संस्कार है, यानी जो बाबा के संस्कार है वही मुझ आत्मा के भी संस्कार है, वही मेरे ओरिजिनल संस्कार है। तो मेरे वही संस्कार इमर्ज रूप में रहे, ये बाबा की श्रीमत है। बाबा के संस्कार है शांति के, प्रेम के, सुख के, क्षमा के, दया के, रहम के, सहयोग देने के, ऐसे ही कहेंगे कल्याण के, ये बाबा के संस्कार है। तो मुझ आत्मा में भी सदा यही संस्कार इमर्ज रूप में रहे। और अगर माया रावण के संस्कार इमर्ज होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संस्कार समय प्रति समय इमर्ज होते हैं, तो बाबा कहते हैं ये मध्य के संस्कार है, ईश्वरीय संस्कार नहीं है। तो इसका मतलब संस्कारों पर अभी मेरा पूरा अधिकार नहीं हुआ, अगर मेरे बीच बीच में ये संस्कार भी इमर्ज हो जाते हैं, क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश वंश इमर्ज होता रहता है। तो ज्ञान का दर्पण बाबा ने हमें दिया है, मेरी कर्मेंद्रियों पर मेरा कितना अधिकार है उसके अनुसार ही मेरा भविष्य निश्चित होता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम क्या बनेंगे, बाबा तो हमें कहता है कि हम विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हैं, लेकिन फिर उसमें भी बहुत पद हैं। राजा तो सभी नहीं बनेंगे, सभी तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, हाँ कोई रॉयल फैमिली में आने वाले बनेंगे, कोई साहूकार बनेंगे, कोई दास दासी बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे, तो आखिर भी मैं कहाँ, मेरा पद कौन सा होने वाला है। तो हम इस ज्ञान के दर्पण से अभी अपने आप को चेक कर सकते हैं, अगर सभी कर्मेंद्रियों पर मेरा संपूर्ण अधिकार है, स्थूल सूक्ष्म सब कर्मेंद्रियां बाबा के श्रीमत पर चलती हैं, तो हमको विश्व राज्य का तख्त मिलने वाला है, यानी हम विश्व महाराजन पद की प्राप्ति करेंगे। लेकिन कोई ना कोई कर्मेंद्रिय धोखा देती है, कभी आंख धोखा देती है, कभी मुख धोखा दे देता है, कभी मन धोखा दे देता है, कभी संस्कार धोखा दे देते हैं, तो फिर प्रजा बनने वाले हैं, राजा नहीं बनेंगे लेकिन प्रजा में आने वाले हैं। और अगर कर्मेंद्रियों के वश होकर के उदास हो जाते हैं, सदा ही कोई ना कोई कारण से अपसेट रहते हैं, उदास रहते हैं, उलझन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, बाबा तो कहता है खुशियों और मौजों की जीवन है, लेकिन खुशी और मौज की बजाय कहीं ना कहीं समस्याओं से घिरे हुए परेशान उदास रहते हैं, तो बाबा कहता है वो दास दासी बनने के संस्कार है। चेक कर सकते हैं अपने आप को कि वर्तमान समय तक मेरे संस्कार किस प्रकार के हैं, यानी मेरी कर्मेंद्रियों पर मेरा कितना अधिकार है, उस अनुसार अगर अभी हमारा शरीर छूटता है तो हमारा क्या पद होने वाला है। हम परिवर्तन कर सकते हैं, अभी भी मार्जिन है पुरुषार्थ की, चाहे तो हम अभी जो वर्तमान में है उससे हम तीव्र पुरुषार्थ करके हम राज्य अधिकारी में आ सकते हैं। ऐसे बाबा साहूकार के लिए कहता है जिनके पास बहुत ज्ञान रतन है और वो सेवा करके पुण्य भी जमा करते हैं, लेकिन उन्हीं ज्ञान रत्नों को स्वयं के समस्याओं के प्रति यूज करके विजयी बन जाए, वो शक्ति नहीं है। जिसको कहते हैं दूसरों को उपदेश दे सकते हैं लेकिन खुद उसे नहीं कर सकते, बाबा उसे दूसरी भाषा में पंडित भी कहता है, कहा कि राम नाम से नदी पार हो जाएगी, तो भगत लोग पार कर भी लेते थे, लेकिन जब खुद के पार करने का वक्त आया तो खुद राम नाम से नदी पार नहीं कर पाए। तो जो इस तरह के बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान सब है उनके पास, ज्ञान रत्नों की कमी नहीं है, ज्ञान दान भी बहुत करते हैं, लेकिन अपने जीवन में विजयी नहीं है, कर्मेंद्रियों पर विजय नहीं बन पाते, तो फिर वो साहूकार प्रजा बनने वाले हैं जो राज्य अधिकारी आत्माओं के बहुत समीप रहेंगे, लेकिन स्वयं राजा नहीं बनेंगे। और रॉयल फैमिली में आने वाली आत्माएं वो आत्माएं हैं जो सभी कर्मेंद्रियों पर विजयी होंगे, लेकिन एक कर्मेंद्रिय कोई कमजोर होगी, अंत तक वो कमजोरी उनमें रह जाती है, तो तख्त पर नहीं बैठ पाते, रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी होते हैं। तो अपने आप को चेक करें, और बाबा कहते हैं चेक करने के साथ साथ क्या करना है, चेंज भी करना है, क्योंकि हम सभी बाबा के पास क्या बनने आए हैं। कल की मुरली में भी था ना, संडे की मुरली में बाबा ने कहा सभी किसमें हाथ उठाते हैं, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। किसी को कहेंगे राम बनना है तो भी हाथ नहीं उठाएंगे। तो जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण भी हमारे अंदर हो, वो लक्षण भी हमें अपने अंदर लाने हैं। ठीक है, तो हम सभी बाबा के, जो बाबा की हमसे शुभ आशाएं हैं कि हम बाबा के राजा बच्चे बने, राज्य अधिकारी बने, तो आप सभी बाबा की उन आशाओं को पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।
आत्मदर्शन स्वयं कदर्शन आत्म ज्योति जगाले, बुझी हुई जगा कर ज्योति स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिया सारी पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी, स्वराज की रक्षा कर तू, स्वराज की रक्षा कर तू, स्वयं का पहरा लगा ले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, तू रथी रथ तन यह तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा, पकड़ बुद्धि की लगाम हाथ में, संस्कारों वश दौड़ा, भूला राही अपने पथ को, भूला राही अपने पथ को, स्वदर्शन से पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मज्योति जगाले, बुझी हुई जगा कर ज्योति स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन।